ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। क्या परिचय देंगे? परिचय तो क्लियर है।
हरे कृष्ण। तो आज हम सभी भक्तों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में गौर कृष्ण प्रभु जी आज हैं हमारे बीच में। और सभी भक्त वैसे तो उनसे परिचित होंगे प्रभु जी से, लेकिन फिर भी प्रभु जी का संक्षिप्त परिचय। प्रभु जी हिजोल में राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य हैं और पिछले विगत लगभग 10-12 वर्षों से भी अधिक से प्रभु जी जो हैं इस पर पूरे भारत में घूम करके और जो है अपनी भागवत कथा के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। और अभी सुन के हम सब ने पहले सुना भी होगा और विशेषकर हिंदी के जो इस्कॉन के प्रवक्ता हैं उनमें से बहुत लोकप्रिय और बहुत ही सुंदर कथा प्रभु जी देते हैं गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों के बारे में। बहुत ही बड़े शास्त्र में मर्मज्ञ हैं और साथ ही प्रभु जी संन्यास कैंडिडेट भी हैं। विगत कुछ सालों में आप देखेंगे प्रभु जी का संन्यास भी होगा। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि प्रभु जी आज हमारे बीच में हैं और वृत्तासुर के इस प्रसंग के ऊपर कथा करने वाले हैं। तो एक बारी हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभु जी के एक विशेष जो हमने उनके व्यक्तिगत रिलेशंस में देखा वो खास बात ये है प्रभु जी के खूबी है कि प्रभु जी सही भक्तों का बहुत उत्साह बढ़ाते हैं। और एक बार मायापुर में प्रभु जी मिले इसके रुक्मिणी के श्लोक को प्रभु जी कहते हैं उनको पहली बार मतलब मायापुर के अंदर पहले मिले थे प्रभु जी उनको कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रुक्मिणी के श्लोक बोलते थे कि क्यों, तो कहते हैं कि आप इतने सारे भक्तों को लेकर के आए, इसीलिए हम तो अकेले आए आपसे भक्तों को लेकर आए हैं। तो आप सबका क्योंकि भक्तों को धाम में लाने की सेवा जो बहुत विशेष सेवा है, भगवान तो प्रसन्न होते हैं, तो हमारा परम सौभाग्य है। और सही भक्तों से निवेदन है कि अपना मोबाइल जो है स्विच ऑफ कर सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं ताकि धाम को करा सुन सके। हरे कृष्ण।
तो बोर्ड पर तो कथा को दो भाग में कर दिया गया, जो श्लोक और श्रीपद गोपाल भट्ट गोस्वामी के तिरुभाव, तो दोनों को कहना है और श्लोक का भी आप व्याख्या करना है और गोपाल भट्ट गोस्वामी का। तो पहले क्या सुनना चाहते हैं? पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में कहता हूं, इसके बाद श्लोक, क्योंकि मुझे भय है कि श्लोक में मैं खो जाऊंगा और समय बीत जाएगा, इसलिए आगे गोपाल भट्ट गोस्वामी। ऐसे श्लोक का रिपीटेशन अभी करा देता हूं लेकिन व्याख्या बाद में। अहम हरे तो पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत वा कर्म करोतु कायः। अहम् हरेतो पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गणित वा कर्म करो तु कायः। हरे कृष्ण। अहम मैं, हरे हे हरि, तव आपके पाद एक मूला जिसके एकमात्र शरण भगवत चरण कमल है, दासानुदास आपके दास का भी दास भवितास्मि हों भूय पुनः मन मेरा मन अस्मरेत स्मरण करे अशुपते हे मेरे जीवन सर्वस्व गुणान गुण समूह ते आपका गणित जप करें वाक मेरे शब्द कर्म आपकी सेवा के लिए कार्य करो तू करे काय मेरा शरीर। एक बार अनुवाद भी बोलिए। हे श्री भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमल के शरण में रहे। हे मेरे जीवन आधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी बाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपके प्रिय सेवा में निरंतर लगा रहे। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों में है। एक बहुत बड़े भागवत टीकाकार ने कहा है कि श्रीमद् भागवतम उस ग्रंथ को कहते हैं जिसमें वृत्रासुर का उद्गार है। यह श्लोक वृत्रासुर के उद्गारों में है। चार श्लोकों में युद्ध स्थल में वृत्रासुर भगवान के गुणों का स्मरण किया है। तो एक आचार्य ने अद्भुत परिभाषा दिया, अगर वृत्रासुर के इन उद्गारों को भागवत से हटा दिया जाए तो भागवत नहीं कहा जा सकता। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि मैं भयभीत हूं कि एक एक श्लोक में दो तीन घंटा लग जाता है। इसलिए मैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरित्र पर कुछ आज गोपाल भट्ट गोस्वामी की तिरुभाव तिथि है, श्रावण कृष्ण पंचमी 1586 में श्रावण पंचमी के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव हुआ। अपने भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। इसके साथ हम इनके संक्षिप्त परिचय की चर्चा करना चाहते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के विशिष्ट परिकरों में एक हैं। विशिष्ट परिकर मतलब छह गोस्वामी, रूप सनातन, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, उनमें एक हैं छह गोस्वामियों में। और भक्ति रत्नाकर में और आप गौर गणूप देश दीपिका कवि कर्णपुर का है जिसमें गौर परिकरों का परिचय दिया गया है कि ये चैतन्य महाप्रभु के परिकर कृष्ण लीला में क्या थे। तो उसके अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी अनंग मंजरी हैं, वो मतभेद प्रस्तुत करते हैं। कोई कोई अनंग मंजरी और कोई कोई गुण मंजरी कहते हैं। तो जो भी हो राधा रानी के मंजरियों में एक है और प्रायः चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में दो दो या चैतन्य महाप्रभु के साथ दो दो परिकरों का एक एक साथ भी आविर्भाव हुआ है। जैसे हरिदास ठाकुर में ब्रह्मा और प्रहलाद, कई परिकर एक साथ महाप्रभु की सेवा करना चाहते तो उनको अवसर दिया गया। तो हो सकता है कि गुण मंजरी और अनंग मंजरी एक साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में आया हूं। तो ये भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध श्रीरंगम में कावेरी तट पर इनका जन्म हुआ। इनके गांव का नाम की भी चर्चा है भक्ति रत्नाकर में, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में विस्तार से इनके विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं कहते हैं, क्योंकि भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती का कहना है कि चैतन्य चरितामृत की जब रचना होने लगी तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि आप अवश्य रचना कीजिए, आशीर्वाद है, और बताए भी। तो नरहरि चक्रवर्ती कहते हैं कि श्री गोपाल भट्ट हृष्ट हैया आज्ञा दिल, बहुत प्रसन्न होकर आज्ञा दिए कि आप चैतन्य चरित लिखो। ग्रंथे निजेर प्रसंग वर्णिते निषेधिल, लेकिन इस ग्रंथ में हमारी चर्चा नहीं होनी चाहिए, मैं इसके लायक नहीं हूं कि गौर परिकरों में मेरा नाम आवे। महाप्रभु के परिकरों की ये विशिष्ट दैन्यता है कि अपने को नहीं बताना चाहते हैं, अपने को छिपाना चाहते हैं। प्रायः वैष्णव की यही परिपाटी रही है कि अपने को छिपाते थे, लेकिन आज स्थिति बदल गई है, अपने को छपाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं बड़े बड़े बोर्ड में, अखबार में, टीवी में, बड़े बड़े चैनलों पर। पहले के लोग अपने को छिपाते थे। इतने महत्वपूर्ण परिकर और कह रहे हैं कि ग्रंथेर निजेर प्रसंग वर्णिते निषेधिल, ग्रंथ की रचना कीजिए, महाप्रभु के शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, उनके दिव्य चरित्रों का वर्णन कीजिए, लेकिन भूल कर यह मत लिख दीजिएगा कि मैं भी उनका परिकर हूं, क्योंकि उनके लायक नहीं हूं। ये इनकी दैन्यता है। फिर भी कृष्णदास कविराज जहां तहां संक्षेप में कहने से माने नहीं, अंततः आज्ञा उल्लंघन कर ही दिए। महाप्रभु के परिकरों में लिखे या न लिखे, लेकिन अपने शिक्षा गुरु के रूप में लिखते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए छ गुरु शिक्षा गुरु जे अमार, ता सबार पाद पद में कोटि नमस्कार। ग्रंथ लिखते हुए अपने छह शिक्षा गुरुओं का नाम लिखते हैं, जिसमें गोपाल भट्ट का भी नाम आ ही गया लाख छिपाने के बाद भी। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए छ गुरु शिक्षा गुरु जे अमार, ता सबार पाद पद में कोटि नमस्कार। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत ऊंचे वंश में जन्म लिए। संयोग की बात है, श्रीरंगम में इनका जन्म हुआ और रामानुजी वैष्णव परिवार में, और इसके साथ द्रविण ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री वेंकट भट्ट, सुप्रसिद्ध ब्राह्मण और श्री रंगनाथ जी के पुजारियों में एक थे। और श्री वेंकट भट्ट के बड़े भाई का नाम था त्रिमल भट्ट और छोटे भाई का प्रबोध भट्ट। वही प्रबोध भट्ट कालांतर में प्रबोधानंद सरस्वती के नाम से जाने गए। प्रबोधानंद चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े परिकर, और उन्होंने वृंदावन में पहुंचकर, प्रबोधानंद सरस्वती के विषय में मैं बताना चाहता हूं, बहुत बड़े वैष्णव थे और वे वृंदावन पहुंचकर वृंदावन की महिमा लिखने की इच्छा किए, वृंदावन की महिमा लिखो। तो सोचे 100 श्लोक में लिखता हूं, तो वृंदावन शतक करके 100 श्लोक लिखे, लेकिन लगा कि ये तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर लिखते हैं, उसको भी शतक नाम देते हैं, 100 श्लोक। ऐसे करते 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 1800 श्लोक लिखे और सबका नाम यही है शतक, 100 श्लोक। तो 1800 श्लोकों में प्रबोधानंद जी ने वृंदावन की महिमा लिखा है, और शतक 1, 2, 3 ऐसे करके 18 शतक लिखे हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती इनके चाचा थे, प्रारंभिक समय में ये अद्वैत मत से प्रभावित थे, जबकि रामानुजी वैष्णव परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन शांकर मत से बहुत प्रभावित थे शुरू में, और अपने भतीजे गोपाल को बड़े स्नेह से पढ़ाना चाहते थे शांकर वेदांत भाष्य। शुरू में पढ़ाने की इच्छा थी कि इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ावें, तो अपने चाचा प्रबुद्ध के संरक्षण में पढ़ना प्रारंभ किए, बहुत कम समय में व्याकरण और न्याय दर्शन अलंकार में दक्षता प्राप्त कर लिए। इनके व्युत्पन्न मति को देखकर प्रबुद्ध के मन में आता था कि इसको शांकर भाष्य भी पढ़ाएं, लेकिन गोपाल उसको पढ़ने से आनाकानी करते थे, इतना तेज प्रखर बुद्धि थी, लेकिन एक शांकर भाष्य नहीं पढ़ना चाहते थे। फिर भी उन्होंने पढ़ाया, पढ़ लिए, लेकिन कोई रुचि नहीं उसमें दिखाए। रामानुजाचार्य के भाष्य और बल्भाचार्य इत्यादि के भाषों को ये बहुत बढ़िया से पढ़ते थे, और अपने प्रवचन में किसी से कहना होता तो उन्हीं की टीकाओं की व्याख्या करते थे। अंततः प्रबुद्ध इनसे नाराज ही रहने लगे कि ये अद्वैत नहीं बन पाया, तो प्रबुद्ध बिना विवाह किए घर छोड़ दिए, सन्यासी बन गए। महाप्रभु की कृपा से बाद में बहुत बड़े वैष्णव आचार्य हुए प्रबोधानंद, जिन्होंने राधा सुधा निधि रूप में बहुत अमूल्य ग्रंथ की रचना किया है। केवल वृंदावन शतक ही नहीं, राधा सुधा निधि बहुत सुंदर ग्रंथ है, राधा रानी के महिमा से भरा हुआ। तो इतने महान विद्वान पंडित वैष्णव परिवार में इनका जन्म हुआ। संयोग की बात है, महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा में गए तो 4 महीना वेंकट भट्ट के घर रुक गए। उस समय गोपाल 10-11 वर्ष के थे। बाल्यकाल में महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ, और बालक होने के कारण स्वाभाविक महाप्रभु की सेवा का भी अवसर मिला, 1-2 दिन नहीं 4 महीना। और बच्चे के स्वाभाविक चंचलता से हीन एकदम गंभीर अवस्था को देखकर महाप्रभु बहुत प्रभावित हुए, कह भी नहीं पाए कि इस बच्चे को दे दीजिए मेरे साथ। लेकिन चलते चलते एक वेंकट भट्ट जी से कुछ कह ही दिए कि आप इस बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, विद्वान बनाइए, लेकिन विवाह मत कीजिएगा। या कृष्णदास कविराज नहीं लिखते हैं, ये नरहरि चक्रवर्ती लिखते हैं अपने भक्ति रत्नाकर में, कि कहते हैं पढ़ाइया सुपंडित करिबे इहारे, विवाह ना दिबे इहा कहिलो तुम्हारे। मैं आपसे स्पेशल बात कहता हूं कि इसको पढ़ा लिखा कर विद्वान जरूर बनाइएगा, लेकिन विवाह मत कीजिएगा। अच्छा, उनके लिए तो यह कह दिए, लेकिन गोपाल से भी कुछ कहे वहां नहीं। जब गोपाल बाद में महाप्रभु के पुरी लौटने के बाद बार बार वेंकट भट्ट से कहा कि महाप्रभु का दर्शन करने चलिए, पुरी चलिए, पुरी चलिए, तो जब 15 वर्ष की अवस्था में 2-4 साल के बाद वेंकट भट्ट पुरी की यात्रा किए, तो वहां पर जब महाप्रभु मिले तो गोपाल वहां से अब जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। जगन्नाथ जी का दर्शन करके भाव विह्वल हो गया, एकदम आंखों में अजस्र आंसू, शरीर रोमांचित। वेंकट भट्ट तो देखकर चकित हो गए कि अष्ट सात्विक विकार इस बच्चे के अंदर, और जब महाप्रभु का दर्शन किए तो वहां से जाना ही नहीं चाहते थे। तो महाप्रभु बड़े स्नेह से हाथ सिर पर रख कर एकदम गोद में लेकर आलिंगन करते हुए कहे, बेटा मैं तुम्हें अवश्य स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक तुमको इनकी सेवा वहीं श्रीरंगम में रहकर ही करना है, और इसके बाद तुम निश्चित रूप से आ जाना, लेकिन मेरे पास नहीं, वृंदावन वृंदावन आकर रहना। तो इस प्रकार महाप्रभु इनको स्पेशल संरक्षण दिए, आज्ञा दिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी केवल एक प्यार लिख पाए हैं बाद में, जब महाप्रभु के शाखाओं का वर्णन कर रहे हैं कि उनकी भक्ति वृक्ष किस प्रकार विस्तृत हुई, उस वृक्ष के कौन कौन मुख्य शाखा हैं, तो उसमें एक प्यार लिखते हैं, श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम, रूप सनातन संगे जार प्रेम आलापन। बस इतना ही लिख पाए, ज्यादा नहीं लिखे हैं, लेकिन इसी में सब कुछ कह दिए। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम, अगर चैतन्य महाप्रभु की एक महत्वपूर्ण वृक्ष है भक्ति वृक्ष, तो उसमें एक सर्वोत्तम शाखा है गोपाल भट्ट, और रूप सनातन संगे जार प्रेम आलापन, रूप सनातन के साथ में प्रेम का आदान प्रदान किए। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी केवल विद्वान ही नहीं, पंडित ही नहीं थे, बल्कि महाकवि थे, गीत वाद्य नृत्य आदि में परम निपुण थे, प्रेम और वैराग्य के मूर्ति थे। जब गाने लगते थे तो एकदम कोई हटने का नाम नहीं लेता, बजाने लगते थे तो वैसे ही परम वैराग्य स्नेह मूर्ति थे। भक्ति रत्नाकर में लिखते हैं नरहरि चक्रवर्ती कि परम वैराग्य स्नेह मूर्ति मनोरम, महाकवि गीतवाद्य नृत्य अनुपम। और एक श्लोक में लिखा गया है, बाल क्रीड़ा परित्यक्त कृष्णम गायन ननर्थ च, बचपन में कंदुक क्रिकेट टीवी ये सब छोड़कर, बाल क्रीड़ा छोड़कर एक कृष्ण के गान में, कृष्ण के लीलाओं को गाने में और नाचने में मस्त रहते थे। कहते हैं बाल क्रीड़ा परित्यक्त कृष्णम गायन ननर्थ च, कृष्ण के विषय में गाते और नाचते थे, इनकी विशेषता थी। तो अंततः महाप्रभु की इच्छा के अनुसार माता पिता का वियोग हो ही गया, ज्यादा समय नहीं लगा, और भगवान की भी अद्भुत इच्छा है, एक साल के अंदर ही माता पिता का अंत हुआ। मतलब इतना इंतजार नहीं करना पड़ा कि पिताजी गए तो माँ फिर 10 साल है, एक साल के अंदर ही। और अभी संयोग से गोपाल भट्ट करीब करीब 20 और 25 वर्ष के अंदर थे, अभी जीवावस्था में थे तभी उनके माता पिता चले गए। तो गोपाल माता पिता की सेवा के बाद, उनका शरीर पूरा होने के बाद, वैसे भागे श्रीरंगम से जैसे खूंटे में बंधा हुआ बछड़ा माँ का इंतजार करता है और माँ आ गई और कोई खूंटे से खोल दे उसको। शाम को वन से चढ़ कर गाय आवे और बंधा हुआ बछड़ा जैसे माँ के लिए इंतजार करता है और कोई खूंटा संयोग से खोल दे रस्सी और दौड़ कर माँ के पास जाता है, वैसे गोपाल भट्ट भागे महाप्रभु के तरफ। लेकिन चलते समय मन में आया कि महाप्रभु मुझको वृंदावन जाने के लिए कहे हैं, मैं पूरी जाऊं कि वृंदावन, एक समस्या, क्या करूं। रास्ते में बहुत सोचने लगे क्या करूं, कहे कि दर्शन के लिए चला जाऊंगा, इसके बाद वृंदावन जाऊंगा। लेकिन मन में आ रहा था ये तो मेरी इच्छा है, महाप्रभु तो मुझे वृंदावन जाने को कहे हैं, तो मैं एक बार वृंदावन जाता हूं और वहीं से अनुमति लेकर जाऊंगा पूरी। तो ये पूरी न जाकर सीधे वृंदावन गए। यह है गुरु आज्ञा की वरीयता, अपनी इच्छा का कोई महत्व नहीं है। इच्छा तो प्रबल है कि महाप्रभु का दर्शन करूं, लेकिन मन में एक क्षोभ है कि शायद हमारे जाने से वो नाराज हो जाएंगे, यहाँ क्यों आया, तुमको वृंदावन जाने को कहा था। यह बात बहुत भारी पड़ी और ये वृंदावन चले गए। वृंदावन जब गए तो सबसे पहले प्रबोधानंद से मिले, अपने चाचा जी से पता करके, और प्रबोधानंद जी उनको पा करके बहुत प्रसन्न हुए। कहे मैं तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार करता था, लेकिन तुमको दो महाविभूतियों से मिलाऊंगा। जो ही प्रबोधानंद से मिले तो प्रबोधानंद इनको रूप सनातन के पास ले गए और सनातन गोस्वामी देखते ही आलिंगन किए। कहे जिस गोपाल का इंतजार मैं वर्षों से कर रहा हूं उनको आज प्राप्त किया। महाप्रभु के श्रीमुख से अनेकों बार तुम्हारी प्रशंसा सुना हूं और गोपाल आज दर्शन किया। तो कहे कि लेकिन महाप्रभु को मेरा वृंदावन आने का संदेश देना चाहिए और साथ ही प्रार्थना भी कि मैं पूरी आना चाहता हूं। तो सनातन गोस्वामी एक बंगाली भक्त के द्वारा सूचना भेजे पूरी। तो सूचना तो मोबाइल फोन तो था नहीं, न कोई पत्राचार की व्यवस्था थी। काफी टाइम लगा, लगभग 3 महीना में महाप्रभु को सूचना प्राप्त हुआ, पैदल जाकर जैसे तैसे। तो सूचना प्राप्त करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन आने का परमिशन भी मांगा गया था। तो महाप्रभु उनको कहे कि सनातन गोस्वामी के लिए पत्र लिखे कि निज भ्राता सम गोपाल भट्टे जानी बो मध्य मध्य शुभ समाचार पठाई बो। उनको अपने भाई के समान मानना है और बीच बीच में उसका शुभ समाचार देते रहना है, आने की जरूरत नहीं है। और फिर कहते हैं कि गोपाल बहुत चिंतित हो गए, क्या करूं क्या करूं। तो गोपाल भट्ट के पास कुछ 40 ग्राम शिला थे, फिर उत्तर भारत की यात्रा की है सनातन गोस्वामी की आज्ञा से। तो उस यात्रा क्रम में इन्होंने 40 ग्राम संग्रह किया, 12 40 ग्राम उसकी पूजा करते थे। तो महाप्रभु एक पत्र में लिखे कि गोपाल मेरी चिंता मत करो, तुमको मैं दर्शन दूंगा और भगवान तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा करेंगे। गौरांग देव आज्ञा दिल गोस्वामी रे, भक्ति रत्नाकर में लिखते हैं, 40 ग्राम है ते तुम्हें देखीते हरि के हरिते। कहते हैं आप 40 ग्राम को ही मेरे रूप में दर्शन करेंगे, राधा रमण रूप में प्रकट होंगे और वहां जैसे राधा कृष्ण का मिलित विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, वैसे ही राधा रमण बिना राधा रानी के राधा रमण हैं। राधा और कृष्ण के मिलित विग्रह राधा रमण 40 ग्राम से प्रकट होंगे और उन्हीं के अंदर तुम मुझको देखोगे। महाप्रभु संदेश भेजे, कितना हृदय को वज्र बनाकर पत्थर बनाकर आज्ञा पालन करना पड़ा होगा आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु के बड़े अन्यतम भक्त और बहुत महान पार्षद हैं। और महाप्रभु 6 गोस्वामियों में स्पेशल गोपाल भट्ट गोस्वामी को ही आज्ञा दिए थे दीक्षा देने के लिए। एक विशेष बात, यह योग्य व्यक्ति है और इसको दीक्षा देने की आज्ञा दिए महाप्रभु। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बार बार कहा करते थे कि आपको महाप्रभु ने गुरु बनाया है। तो समय आने पर अपना कौपिन डोर और अपने आसन जिस पर महाप्रभु बैठ करके जप करते थे गंभीरा में, वह आसन और डोर कौपिन आदि भेजे और आज्ञा दिए कि इस पर बैठकर भजन करना और इसी आसन से आने वाले वैष्णव को दीक्षा देना। जो भी सम्मानित वैष्णव आएंगे भक्त सीरियस, उनको दीक्षा देना। तो स्वयं गुरु पद पर चैतन्य महाप्रभु प्रतिष्ठित किए, जबकि रूप सनातन को ऐसी आज्ञा नहीं दी गई, इसलिए रूप सनातन गोस्वामी डायरेक्ट किसी को दीक्षा नहीं दे पाए, शिष्य नहीं बना पाए। जीव गोस्वामी के लिए भी महाप्रभु का आदेश था, इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी अधिक वैष्णव को दीक्षा दिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी एक सुविख्यात गुरु थे छह गोस्वामियों के अंदर। यह महाप्रभु की विशेष कृपा है। और एक विशेष बात है, सनातन गोस्वामी एक ग्रंथ की रचना करने लगे, वैष्णव आचार पर कुछ लिखना प्रारंभ किए सनातन गोस्वामी, जिसका नाम हुआ हरिभक्ति विलास ग्रंथ। और गोपाल भट्ट गोस्वामी भी उसी प्रकार के कुछ डायरी लिखे थे, सनातन गोस्वामी को दिखाए। तो सनातन गोस्वामी इतना प्रसन्न हुए, कहे कि गोपाल इस ग्रंथ को पूरा कर लेना चाहिए, लेकिन इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए, यह तुम्हारे नाम से ही एक ग्रंथ रहेगा, हरिभक्ति विलास, गोपाल भट्ट गोस्वामी की रचना। हरिभक्ति विलास यद्यपि सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी दोनों मिलकर लिखे हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी अपनी दैन्यता में कहे कि गोपाल यदि मेरे नाम से यह ग्रंथ प्रकाशित होगा भविष्य में, तो लोग गाली देंगे, मेरे जैसा नीच जो मुसलमान की नौकरी किया, उनके एक जूठा हुक्का पिया, गायों का मांस खाया, ऐसा नीच वैष्णव के आचार की व्याख्या करे, या अनाधिकार चेष्टा है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है। तुम जन्मजात ब्राह्मण, यद्यपि जन्मजात ब्राह्मण तो सनातन गोस्वामी भी थे, लेकिन उनकी दैन्यता कहे कि नहीं, आप जन्मजात ब्राह्मण हो, कावेरी के पावन तट पर आपका जन्म हुआ है श्रीरंगम में, और रामानुजी वैष्णव परंपरा में आप वैष्णव के आचार की चर्चा करने में समर्थ हो, महाप्रभु ने आपको गुरु बनाया है। इस तरह से सब कुछ कहकर सनातन गोस्वामी वह ग्रंथ गोपाल भट्ट के नाम में ही डाल दिया। तो स्मार्ट ग्रंथ, स्मृति ग्रंथों को लेकर वैष्णव के लिए एक स्मार्ट ग्रंथ है हरिभक्ति विलास। पूरा पूरा वैष्णव का आचार, कैसे उठना चाहिए, कैसे दातुन करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, कैसे भगवत अर्चना करना चाहिए, उसमें किन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, अर्चन दीपिका हरिभक्ति विलास से ही मंत्र लेकर निकाला गया ग्रंथ है। तो इस तरह से इन्होंने वैष्णव आचार पर ग्रंथ लिखा हरिभक्ति विलास। इसके साथ साथ षट संदर्भ कारिका इन्होंने लिखा, एक छोटा सा डायरी षट संदर्भ कारिका, और जीव गोस्वामी को देकर कहा कि जीव इसकी व्याख्या करो। तो जीव गोस्वामी ने षट संदर्भ उसी के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी का षट संदर्भ कारिका ग्रंथावली है, और फिर साथ में सत क्रिया सार दीपिका, थोड़ा सा छोटा ग्रंथ, संस्कार दीपिका, और कवि कर्णपुर के कृष्ण कर्णामृत का टीका, जिसको महाप्रभु बहुत पढ़ा करते थे, उस पर टीका भी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखा। इसके साथ बड़े ही निष्ठा भक्ति के साथ शालिग्राम की सेवा किए। आप कथा जानते ही हैं कि शालिग्राम के पास तो कोई हाथ पैर आंख मुंह तो है नहीं। एक बार कोई श्रद्धावान व्यक्ति आया और वृंदावन के सभी मंदिरों में श्रृंगार की व्यवस्था किया, उनके लिए वस्त्र और आभूषण आदि दिया। इनके मन में आया कि हमारे ठाकुर जी का भी हाथ पैर रहता तो हम श्रृंगार करते। तो उनके 12 शालिग्राम में एक दामोदर नाम के शालिग्राम शिला थे, वही सुबह में जब देखते हैं तो एकदम आकृति में हो गए राधा रमण के रूप में। और इसको उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका आविर्भाव हुआ, और उस दिन बड़ी भारी उत्सव के साथ इनकी स्थापना की गई। और गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि उसी राधा रमण मंदिर में आज भी है। सन 1586 में इनका जन्म 1500 ईस्वी में हुआ था, ठीक 86 वर्ष तक रहे, और श्रावण कृष्णा पंचमी के दिन 1586 में इनका राधा रमण मंदिर के अंदर ही तिरुभाव हुआ। तो आज भी इनकी समाधि उस मंदिर में आप देख सकते हैं। यह संक्षेप में रहा गोपाल भट्ट गोस्वामी की जीवन चरित्र। अब तो समय ज्यादा हो गया, फिर भी मैं श्लोक की व्याख्या करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। अहम हरे तौ पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गणीत्वा कर्म करोतु कायः। आप लोग कब तक सुन सकते हैं अधिक से अधिक है? जब तक सुनाए क्या 15 मिनट 8:15 बजे तक चल सकता है? 9:15 तक ठीक है, 9:15 तक। देखिए यह प्रसंग श्रीमद् भागवतम के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंगों में है और यह 6वें स्कंद में भागवत के एक महत्वपूर्ण विषय का वर्णन हुआ है, पोषण तत्व। भागवत में 10 टॉपिक है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मनवंतर सब। अतः सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणमूतय मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 विषय भागवत में है। भगवद गीता 5 विषयों की वर्णन करती है और श्रीमद् भागवतम 10 विषयों का है। तो 10 विषय में सर्ग विसर्ग के साथ पोषण एक टॉपिक है। सर्ग कहते हैं सृष्टि को, जो भगवान ने सृष्टि किया, और विसर्ग कहते हैं सृष्टि के विस्तार को, ब्रह्मा से लेकर अब तक जो विस्तार हो रहा है। और स्थान पोषण, पोषण भगवत कृपा से जो जीवों का पोषण होता है उसको पोषण कहते हैं। तो पोषण 2 प्रकार का होता है, एक जनरल पोषण और एक स्पेशल। तो चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, दुराचारी हो, भक्त हो, सबका पोषण भगवान करते हैं। चाहे कितना हो गाली देने वाला हो लेकिन फ्री ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे नाकों तक। सूर्य की व्यवस्था प्रकाश फ्री है, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले अन्न जल सब फ्री है। इस प्रकार भगवान पोषण सबका करते हैं, वो है कॉमन जनरल पोषण। और एक होता है स्पेशल पोषण, अपनी विशेष कृपा से अपने भक्तों का पोषण करते हैं, उसको कहते हैं पोषण। इस 6वें स्कंद में अजामिल जैसा गिरा हुआ नीच व्यक्ति का भगवान नाम उच्चारण करने के कारण भगवान ने पक्षपात किया, अपने परिकरों को भेज करके जमदूतों से रक्षा कर लिया। और इसके बाद आगे फिर इंद्र जैसे त्रिलोकी के स्वामी गुरु के चरणों में अपराध करने के बाद भी उनका पोषण किए, क्योंकि इंद्र भगवान के भक्त हैं। बृहस्पति जी का अपमान किए, विश्व रूप की हत्या किए, इसके बाद भी भगवान अपने भक्त की पोषण करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि भगवान का ये स्वभाव है, रहती न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरति सौबार ही एक ही। भगवान अपने भक्तों के द्वारा किए गए गलती को तो ध्यान ही नहीं देते कि गलती किया है, अगर कुछ अच्छा किया है तो सैकड़ों बार उसकी चर्चा करते हैं, कुछ गड़बड़ किया है तो ये उनको दिखाई ही नहीं देता, इतना पक्षपात करते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए कि कोई भक्त गलती कर दिया, चूक किया तो इसको ध्यान नहीं देते, करत सुरति सौ बार ही एक ही, सैकड़ों बार उसके अच्छे कर्मों का याद करते हैं, इसने ऐसा किया। यह है विभीषण जी, जिनके कृपा से मैंने रावण पर विजय प्राप्त किया, अपने सभा में वर्णन करते थे, राजसभा रघुवीर बखाने। वशिष्ठ जी और भरत जी को बताते थे, ये है सुग्रीव जी जिनके कृपा से मैंने रावण पर विजय प्राप्त किया। लेकिन वो लोग कुछ गड़बड़ी किए हैं इसको नहीं ध्यान देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि इतना पक्षपाती भगवान को नहीं होना चाहिए, लेकिन है। जिस गलती से बाली का वध किए वही गलती सुग्रीव किया, लेकिन राम कभी मन में नहीं लाए कि गलती किया। बाली को मारते हुए बाण मारने के बाद जब बाली पूछा कि क्यों प्रभु ऐसा किए, छिप कर मुझको क्यों मारे, मैं आपके प्रति कौन सा गलती किया था, तो कहते हैं कि तुम पापी हो, अपने भाई के पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किए हो। यद्यपि बाली तर्क में भगवान को हरा दिया, कहा कि अच्छा ये पाप का रिजल्ट है कि जीवन के अंत में आपका दर्शन कर रहा हूं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुख आवत नाही, और आज मैं आपको देखते हुए शरीर छोड़ने जा रहा हूं, ये पाप का रिजल्ट है। तो भगवान चुप हो गए। तो यदि वही काम सुग्रीव भी किया, बाली के पत्नी को अपना पत्नी बनाया। गोस्वामी लिखते हैं कि सोई कर तूति विभीषण खेरी, विभीषण भी वही गलती किया, सपने नहीं राम ही हेरी। यह है भगवान के स्पेशल पक्षपात। तो आप इंद्र का चरित्र सुनेंगे तो साधारण बुद्धि से इंद्र पर क्रोध आ जाएगा, ऐसा नलायक त्रिलोकी का स्वामी होना चाहिए, गुरु का अपमान करता है। अपमान करने की बात तो दूर है, गुरु का सिर काट दिया विश्व रूप का, इसके बाद भी इंद्र का पोषण किए। और यहां तक कि साधारण अपराधियों की बात तो छोड़िए, वैष्णव अपराधियों का भी पक्षपात भगवान कर लेते हैं, जबकि सर्वनाश हो जाता है वैष्णव अपराध से, लेकिन भगवान चांस देते हैं उसको भी कि मेरा भक्त है। उसी में है चित्रकेतु महाराज, जिन्होंने भगवान शिव का अपमान किया, भरी सभा में उंगली उठाकर शिव पर दोषारोपण किया। वही चित्रकेतु महाराज माता पार्वती के श्राप से वृत्रासुर हुए। एक कथा बाद में आएगी, पहले वृत्रासुर की कथा आ गया है, और बाद में महाराज परीक्षित जिज्ञासा किए हैं कि युद्ध स्थल में जहां एक दूसरे को मारने मरने के लिए लोग तैयार हैं, वहां एक असुर शरीर में वृत्रासुर को इस तरह भगवान के प्रति समाधि कैसे लग गई। तब उनके पूर्व जीवन की कथा कहते हैं कि ये चित्रकेतु महाराज थे, महर्षि अगस्त और देवर्षि नारद की कृपा से इन्होंने भक्ति प्राप्त किया। केवल 7 दिनों में भगवान शंकरषण को प्रसन्न कर लिए और गंधर्वों के अधिपति बन गए। एक बार भगवान शिव के सभा में पहुंचकर सत्संग करने गए, तब तक वहां एक दृश्य देखते हैं कि भगवान शिव अपनी पत्नी को जांघ पर बिठाकर हाथ से पकड़े हुए हैं गोद में और कथा कह रहे हैं। चित्रकेतु महाराज को अच्छा नहीं लगा, वहां टोक दिए कि देवों के देव महादेव ये कौन फैशन चालू कर दिए, एक कथा कहने की कौन सी फैशन है, एक साधारण व्यक्ति भी अपनी स्त्री के साथ पब्लिक स्थान में ऐसे नहीं बैठ सकता है, लेकिन आप कथा के बीच में गोद पर और हाथ से पकड़कर बैठे हैं। तो भगवान शिव को तो ध्यान ही नहीं रहा, हो तो समाधि में रहते हैं सर्वदा, और पार्वती जी को इतना सुंदर आसन मिला है वो अपने से क्यों छोड़े। चक्रवर्ती ठाकुर एक लंबी टीका लिखे हैं कि आखिर गलती किसका था। चित्रकेतु को तो फोकट में श्राप मिल गया, लेकिन गलती किसका है, शिव जी का गलती है कि पार्वती की गलती है कि चित्रकेतु की गलती, किसकी गलती है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि पार्वती पहले से बैठी हुई थी और भगवान शिव मना नहीं किए, तो इतना सुंदर आसन प्राप्त है, भगवान शिव का आलिंगन प्राप्त है, तो उसको क्यों छोड़े इस सौभाग्य को अपने से। और भगवान शिव को ध्यान ही नहीं आया, तब तक कुछ साधु महात्मा ऋषि मुनि आकर बैठ गए, प्रणाम कर दिए और प्रश्न करने लगे, सत्संग चालू हो गया। शिव जी को याद ही नहीं आया कि उनको कहा जाए कि तुम हट जाओ किनारे बैठो, सत्संग में शिव जी भूल गए और प्रश्न उत्तर में कथा एकदम एक दूसरे महात्मा बड़े बड़े लोग, यहां तक कि महर्षि भृगु अंगिरा और वहां देवर्षि नारद सब लोग उपस्थित थे और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब आकर बैठकर कथा सुन रहे हैं। चित्रकेतु को अच्छा नहीं लगा। चित्रकेतु जब बोलना प्रारंभ किए तो वहां उनके गुरु अंगिरा और देवर्षि नारद भी थे। यदि चित्रकेतु गलती काम कर रहे थे, भगवान शिव को टोक रहे थे, तो गुरु का कर्तव्य है शिष्य को डांटे। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मना, अरे क्या बोल रहे हो, लेकिन अगस्त और देवर्षि नारद कुछ नहीं बोले, इसका अर्थ है कि सबके मन में था कि इनको टोका जाए। तो कुछ नहीं बोलकर चित्रकेतु का अनुमोदन तो कर ही दिए, कोई कुछ नहीं बोला, चित्रकेतु बोले लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। भगवान शिव मुस्कुराने लगे चित्र केतु की बात सुनकर, और पार्वती जी को क्रोध आ गया। तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, क्या पार्वती का क्रोध अनुचित है? इस तरह से बोलने लगी कि अच्छा बेटा, तुमको शिव और ब्रह्मा पर शासन करने का अधिकार मिल गया, मूढ़, थोड़े समय में अहंकार हो गया, मैं तुमको श्राप देती हूँ कि असुर योनि प्राप्त करो और इस गंधर्व पति का अहंकार का मजा तुमको मिल जाएगा, नीच कहीं का, तुमको शर्म नहीं आता है? इस तरह से पार्वती जी श्राप दे दी। तो पार्वती जी गलती की, चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं नहीं, भक्ति दशा मृत सिंधु में सिद्धपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि भगवान और गुरु की जहां निंदा होती हो, सामर्थ्य हो, तो निंदा करने वाला का जीव उखाड़ लेना चाहिए, और नहीं तो आत्महत्या कर लेना चाहिए जबरदस्ती सुनने पड़े तो, नहीं तो उस स्थान को छोड़कर भाग जाना चाहिए, तीन काम। तो पार्वती के बाद पास सामर्थ्य था, उनका जीव उखाड़ ली, श्राप दे दी, वो अपने उचित प्वाइंट पर है। और भगवान शिव मुस्कुरा रहे हैं। इसके बाद चित्रकेतु महाराज प्रणाम किए और कहे, माते मुझे क्षमा करो, मेरे शब्दों से तुमको कष्ट हुआ, लेकिन मैं अपने समझ से उचित कहा, लेकिन उचित कहते हुए भी मैंने भगवान शिव पर उंगली उठाया, यह निश्चित रूप से अनुचित काम है, इसका फल मुझे मिलना ही चाहिए, महापुरुषों के ऊपर आक्षेप करना, इसका फल मुझे मिलना चाहिए, मैं निश्चित रूप से असुर योनि में जाऊंगा, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन आप अवश्य क्षमा कीजिए, मेरे बातों से आपको कष्ट हुआ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपके श्राप में कुछ कंसेशन हो इसके लिए नहीं, मेरे बातों से आपको कष्ट हुआ इसलिए क्षमा मांगता हूं। इसके बाद चित्रकेतु जब चले गए तो भगवान शिव कहते हैं, देख ली भगवान हरि के भक्तों की महिमा, देख लिया, समझा, अगर चित्रकेतु चाहे तो श्राप देकर तुमको भस्म कर सकता है, लेकिन यही है वैष्णवता, सामर्थ्य होने के बाद भी सहने की क्षमता हो, प्रतिकार की इच्छा न हो, उसको वैष्णव कहते हैं, इसको साधु कहते हैं। तो इस तरह से चित्रकेतु महाराज को श्राप प्राप्त हुआ, और वही विश्व रूप के मरने के बाद जब त्वष्टा जी इंद्र के प्रति नाराज होकर इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त कर रहे थे, उसी यज्ञ कुंड से चित्रकेतु महाराज ही वृत्रासुर के रूप में, असुर रूप में प्रकट हुए और हाथ में विशाल त्रिशूल लेकर के इंद्र पर आक्रमण किए। और इंद्र अपने सामर्थ्य से, अपने देव समाज से, जो भी शक्ति सामर्थ्य था, सब कुछ लेकर युद्ध में आए, और वृत्रासुर का शरीर इतना बड़ा था कि उनके सिर से आकाश ढका हुआ था, सारा भूमंडल उनके शरीर के अंदर दिखता था, इंद्र के द्वारा छोड़े गए हथियारों को पकड़ पकड़ कर नाश्ता कर रहे थे, कहीं कुछ बिगड़ ही नहीं रहा था, देवता लोग एकदम घबरा गए। भगवान का शरण, देवताओं की एक विशेषता है, भोग की प्रवृत्ति है, रजगुणी होते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो भगवान के शरणागत है। जब भारी संकट उपस्थित हुआ तो हरि स्मृति सर्व विपदः विमोक्षणम्, भगवान श्री हरि का स्मरण किए और भगवान उनको आश्वासन दिए कि इंद्र तुम दधीची ऋषि के हड्डी से वज्र तैयार करो, उससे वृत्रासुर मारा जाएगा। लंबी कथा है, अंततः दधीची ऋषि के पास देवता लोग याचना किए और दधीची भगवान में मन लगा करके अपना शरीर छोड़कर उनको अपना अस्थि दिए और उससे वज्र तैयार हुआ। अब वज्र लेकर देवराज इंद्र युद्ध भूमि में उपस्थित हैं वृत्रासुर के सामने, मन में गर्व है कि भगवान विष्णु की आज्ञा से ये वज्र बना है, अब ये असुर मारा जाएगा। लेकिन ऐरावत पर खड़े हुए इंद्र अपने हाथ में वज्र लिए हैं और गदा भी लिए हैं, तो एक बार गदा को लेकर के खूब उसमें रन बनाकर घुमा कर एक बार मारे वृत्रासुर के तरफ, और वृत्रासुर उस गदा को एक फूल की तरह बाएं हाथ से पकड़ लिया और पकड़ करके फिर घुमा करके मारा, और वह गदा ऐरावत के सिर पर जाकर लगा और 28 हाथ पीछे जाकर ऐरावत गिर पड़ा, और गिरने के बाद इंद्र धरती पर आ गए और उनके हाथ से जो वज्र था वो लुढ़कते हुए वृत्रासुर के तरफ चला गया। तब अब इंद्र एकदम भय से कांपने लगे कि कहीं उस वज्र को उठाकर मार न दे। तो वृत्रासुर हंसते हुए कहा, इंद्र भयभीत मत हो, भय मत करो, मैं ऐसा नालायक व्यक्ति नहीं हूं कि तुम निहत्थे को और रथ से हीन व्यक्ति को मैं वार नहीं कर सकता। तुम तैयारी कर लो, फिर से रथ पर चढ़ जाओ, हथियार हाथ में उठा लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो इंद्र अपने तर्जनी उंगली से जो अमृत शावी है उसे ऐरावत के सिर का स्पर्श किए और फिर ऐरावत ठीक हो गया। इंद्र के तर्जनी उंगली में अमृत निकलता है और उससे ऐरावत का चिकित्सा किए और ऐरावत ठीक ठीक हो गया। और इसके बाद इंद्र अपने ऐरावत पर चढ़कर और वज्र हाथ में लेकर तैयार हुए, तब वृत्रासुर पूछता है, तैयार हो गया? लेकिन इंद्र कांप रहे हैं कि हो सकता है वज्र को छोड़े और उसको भी पकड़ ले। तब कहते हैं, सुरेश कस्मान हिनोसि वज्रम, पुरस्थिते बैरिणी मय मोघम। हे सुरेश, क्यों नहीं तुम वज्र छोड़ रहे हो, क्या बात है? पुरस्थिते, तुम्हारे निकट पर बैरिणी मय मोघम, मेरे जैसा बैरी तुम्हारा प्रकट दुश्मन तुम्हारे सामने है और तुम्हारे हाथ में वज्र है, फिर भी क्यों नहीं छोड़ रहे हो, क्यों नहीं छोड़ रहे हो? तो इंद्र की तो मजबूरी समझ में आ रहा है वृत्रासुर को, डर रहा है कि कहीं पकड़ न ले। तो कहते हैं, अरे यार कैसा तू वैष्णव है, वृत्रासुर कह रहे हैं, तू कैसा वैष्णव है, तुमको भगवान पर विश्वास नहीं है? मां संशयिष्ठा न गदे वो वज्र। अरे इंद्र संशय मत करो, यह गदा की तरह विफल होने वाला वज्र नहीं है। श्याम निष्फल कृपणार्थे वयांचा, जैसे कृपण व्यक्ति के पास कोई भिखारी आ जाए और वह कृपण उनको भिक्षा न दे पावे, उसकी याचना विफल हो जाती है, वैसा यह वज्र विफल नहीं होगा, गदा की तरह विफल नहीं होगा। तुमको इतना भी पता नहीं है कि वज्र का क्या अर्थ है? ननुएश वज्र तव शक्र तेजसा, हरे दधीचे तपसाच तेजिता। देखिए वृत्रासुर की वैष्णवता, कह रहे हैं कि ननु एस वज्र तव शक्र तेजसा, हे शक्र, सौ सत्र जग करने वाला, शक्र इंद्र का संक्षिप्त नाम है, साइन करते हैं शक्र में, शक तलाबी शक, आप ये क्रतु शतक क्रतु, शतक क्रतु है, शतक अर्थ सौ, अक्रतु का मतलब यज्ञ, सौ यज्ञ करने वाला को शक्र कहते हैं। सौ अश्वमेध यज्ञ करके तुमने भगवान की आराधना किया, या दो चार वर्ष में भजन करने वाले नए भक्तों को भी पता चल जाता है कि भगवान का अर्थ क्या है। नया भक्त अभी इनिशिएशन नहीं लिया है वो भी भगवान की महिमा जान जाता है, नए विभूति को भी पता है, तुम सौ सौ बार अश्वमेध यज्ञ करके भी भगवान की महिमा नहीं समझा। हरे दधीचे तपसा च तेजिता, यह भगवान की आज्ञा से बना हुआ वज्र है और इसमें वैष्णव राज दधीची की तपस्या लगी है, तपस्या दधीची ऋषि की तपस्या से तपस्वी वह शरीर है और उस शरीर की हड्डी से यह वज्र बना है, इसमें विष्णु और वैष्णव का तेज है, भगवान विष्णु की आज्ञा रूप तेज और दधीची के तपस्या रूप तेज से यह वज्र तेजित है, गदा की तरह निष्फल नहीं होगा। हद हो गया तुम्हारी वैष्णवता का, तुमको भगवान पर भी भरोसा नहीं है। ते नैव शत्रुम जहि विश्वयन्ति तो जतो हरिर विजय श्री गुणास्ततः, गीता बोल रहा है वृत्रासुर, ते नैव शत्रुम जहि विश्वयन्ति तो, आप उसी वज्र से अपने शत्रु को मारिए, यह विष्णु के द्वारा यंत्रित है, इसमें शक्ति भरा हुआ है। और यह सिद्धांत तो याद रखना चाहिए, यतो हरिर विजय श्री गुणास्ततः, जत जोगेश्वर कृष्ण जत पार्थ धनुर्धर तत् श्री विजय धुति भूति ध्रुवा नीति मति मम। संजय कहते हैं, जहाँ भगवान श्री हरि है और जहाँ भगवान श्री हरि का भक्त पार्थ है धनुर्धर, जहाँ विष्णु और वैष्णव दोनों हैं वही विजय है, श्री है, सब कुछ है। तो जतो हरि ही विजय श्री गुणास्तता, जहां भगवान श्री हरि है वही विजय है। जहां भगवान विष्णु और जहां भगवान का भक्त वैष्णव का तेज है वहां विजय निश्चित है, वही श्री है, वही सारा गुण है। यह सिद्धांत तो किसी भी वैष्णव को जानना चाहिए। तो तुम क्यों डर रहे हो, मारो। तो मानो इंद्र कहे कि मैं मारूंगा तो आप पकड़ लेंगे, तब प्रतिकार मुझको उत्साह देकर वज्र छुड़वा रहे हो और पकड़ छीन लोगे तब क्या होगा। तो कहते हैं अरे नहीं, अहम समाधाय मनो यथा, अहम समाधाय मनो यथा न संकर्षण तत् चरणा रविंदे तद वज्र रहो लुलित ग्राम पासो गति मुनेरियाम अपविद्ध लोक। मैं युद्ध अब नहीं करूंगा, मैं तो तुम्हारे वज्र का इंतजार कर रहा हूं। मैं तो भगवान शंकरसन के चरणा रविंद में समाधि से युक्त हो जाऊंगा। मेरा जो कलुषित या असुर शरीर है, माता पार्वती के प्रति किया गया अपराध है भगवान शिव के प्रति, और माता पार्वती के द्वारा जो श्रापित या असुर शरीर है, वह असुर शरीर दधीची के पवित्र अस्थि का स्पर्श होते ही परम पावन हो जाएगा, छूटेगा, और मैं मुनियों के जो आराध्य भगवान का चरण कमल है उसको प्राप्त करूंगा। मैं युद्ध करने नहीं जा रहा हूं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब वह वज्र आवे और मेरा यह असुर शरीर छूट जाए और मैं फिर भगवान विष्णु के संकर्षण के उस लोक को प्राप्त करूं। फिर कहते हैं कि देखो इंद्र, भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, जानते हो। पुनसाम किलई कांत धिया सकानम या संपदो देवी भूमौ रसायम न राति जद्वेष उद्वेग आधि मद कलिर व्यसनम संप्रयास। भगवान अपने अनन्य भक्तों को संपत्ति नहीं देते हैं, तुम्हारे जैसे कामी लोभी लंपट भोगी को देते हैं। अब भक्त होने के बाद भी जब संसार की कामना कर रहा है तो बेचारे भगवान क्या करेंगे, वही दे देते हैं। कहते पुनसाम किलई कांत धिया सकानाम, जो एकांत धिया है, जो अनन्य भक्त है, उसको यह संपत्ति भूवि दिवी और रसायाम, पृथ्वी की संपत्ति, स्वर्ग की संपत्ति और रसातल की संपत्ति नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्या उसमें दोष है। कहते न राति जब देश उद्वेग आदि, उन संपत्तियों में द्वेष है, उद्वेग है, आदि है, व्याधि है, मद है, कली है, कला है, झगड़ा है, व्यसन है, प्रयास है। ऐसे संपत्ति को भगवान देकर अपने भक्ति से दूर क्यों करेंगे। जो अनन्य भक्त है उसको ये सब संपत्ति नहीं देते। तुम त्रिलोकी के भोग के लोभी हो, तुमको भले देंगे, लेकिन मैं भगवान का अनन्य भक्त हूं, मुझे नहीं देंगे। तय वर्गिकाया विघात मस्मत पतिर विधस्ते पुरुषस्य शक्रः ततो नुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन ने। कहते हैं इस प्रकार धर्म अर्थ काम के आयास में जो लगे हुए हैं त्रैवीर्ग, उनका विनाश करते हैं भगवान और अपने अनन्य भक्तों को अपने चरण कमल देते हैं, जो सबके लिए सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। जो दुर्लभ हो अकिंचन गोचरन नहीं, अन्य दुर्लभ हो और अकिंचन को गोचर। एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में दो बात कहते हैं। जो दुर्लभ किसको, अन्य, जो अन्य लोगों के लिए दुर्लभ है, और अकिंचन गोचर हो, जो अकिंचन भक्तों को गोचर होता है, प्राप्त होता है, वो संपदा भगवान देते हैं। तो ऐसे बोलते 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 वृत्रासुर अब इंद्र से बात करना छोड़ दिए, समझ गए कि ऐसे नहीं मारेगा, ये तो डर रहा है। जब मैं मारूंगा खींचकर तमाचा या कोई हथियार तो एकदम प्रभावित होकर के छोड़ देगा बाद में, और जब वज्र छोड़ेगा तो निश्चित मैं भगवान के धाम को जाऊंगा, भगवान शंकरसन का चरण प्राप्त करूंगा। तो मानो निकट भविष्य में जो सुख, जो संपत्ति प्राप्त होने वाली है, उसको वर्तमान में खींच करके चिंतन करते 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 वृत्रासुर समाधि में हो गए, और मानो इस भावना में भावित हो गए कि मैं भगवान के पास पहुंच गया। तो पहुंचना ही है, अब तो उसके हाथ में वज्र है, अगर इंद्र को ये डिस्टर्ब करेगा वृत्रासुर तो अंत में तो छोड़ेगा ही, और छोड़ते ही मैं भगवान के पास चला जाऊंगा, ये असुर शरीर समाप्त हो जाएगा। तो जब मैं भगवान के पास पहुंचूंगा तो मानो पहुंच गया, तो भगवान के पास पहुंचने के बाद भगवान से कंप्लेन, अब मैं आपका दास नहीं बनना चाहता हूं, बहुत हुआ, आपका डायरेक्ट दास होने में बहुत खतरा है, इतना अहंकार हो गया कि भगवान शिव को भी अपने बराबर मानकर उनके दोषों को निकाल दिया, मैं तो आपके दासों की परंपरा में रहना चाहता हूं। तब ये चार श्लोक बहुत सुंदर वृत्रासुर समाधि की अवस्था में बोलते हैं, और इंद्र भगवान के भक्त हैं, वे बेचारे ऐरावत पर खड़े खड़े प्रवचन सुन रहे हैं, युद्ध बंद हो गया है, इंद्र को भी आश्चर्य है और अच्छा लग रहा है। कहते अहम हरे तो पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः, हे हरे। देखिए भगवान के अनंत नाम है, लेकिन हरि शब्द का संबोधन इसलिए करते हैं वृत्रासुर कि हे दुख को हरण करने वाले हरि, आप ही सारे दुख को दूर कर सकते हो, हमारे मजबूरी को, हमारे समस्या को आप ही समझ सकते हो। महाप्रभु कहते हैं हरि रो अनेक अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथा पिरुक्रमे कुर्वंती अहेतुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुरो हरि। इस श्लोक की व्याख्या किए हैं महाप्रभु, 61 अर्थ किए हैं इस श्लोक का सनातन गोस्वामी के प्रति। तो वहां पर हरि शब्द का इत्थम भूत गुरो हरि, तो हरि शब्द का अर्थ करते हुए अंत में कहते हैं हरि र अनेक अर्थ, बहुत अर्थ है, दुई मुख्यतम, दो मुख्य है, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि का अर्थ है समस्त अमंगल को हरने वाले हैं, सारा अमंगल सारा दोष जिसके कारण जीव दुख भोग रहा है, समस्त अमंगलों को भगवान हरि हरण कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है, और अपना प्रेम संपदा देकर मन को हर लेते हैं, चित्त को हर लेते हैं। इसलिए वृत्रासुर भी उसी नाम का स्मरण कर रहा है, मेरा अमंगल हरिये, हे हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास में भूय, पुनः मैं आपके चरण कमलों के दासों का दास होना चाहता हूँ, मैं आपके भक्तों का भक्त होना चाहता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपी भरतुर पद कमलयो दास दासानुदास। तो इस भक्तिमय जीवन का सारांश यही है कि पहले व्यक्ति भगवान के भक्तों का शरण ले, एक परंपरा से चैतन्य महाप्रभु ने इसका उपदेश किया है। गोपियों के पालक गोपीनाथ गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास, तो इसका अर्थ यह हुआ कि परंपरागत आचार्यों से दीक्षा लेनी चाहिए, जो भगवान के से कनेक्टेड परंपरा है, भगवान के बाद ब्रह्मा, ब्रह्मा से देवर्षि नारद, और नारद के परंपरा में आने वाले वैष्णव आचार्य, उनके संपर्क में आकर दीक्षा लेनी चाहिए और उनके गुरु के आदेश के अनुसार भजन करना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट संबंध में स्वतंत्रता हो जाती है, अहंकार हो जाता है, तो इस अहंकार के कारण बहुत सारे अपराध होने की संभावना है। तो कहते हैं कि मैं आपके दासों का दास फिर से होना चाहता हूं, क्या यह चांस फिर से मिलेगा? मैं आपके भक्तों के क्रम में रहना चाहता हूं, और वहां रहकर क्या करना चाहता हूं? तो कहते मन स्मरेता सुपते गुणांस्ते, अशुपते माने प्राणपति, अशु माने प्राण, प्राणपते हे मेरे जीवन के सर्वस्व, मैं मन से आपके गुणों का स्मरण करना चाहता हूं, आपका भक्त वात्सल्य स्नेह सौहार्दमय गुणों का मैं याद करना चाहता हूं, अपने वाणी से आपके कर्मों की चर्चा करना चाहता हूं, गणित वाक कर्म, मैं आपके लिए आपके कर्म जो है अद्भुत लीला है, जन्म कर्म चले दिव्यम, उस दिव्य कर्म को उस दिव्य जन्म की चर्चा वाणी से करना चाहता हूं, भागवत के श्लोकों को वाणी से बोलना चाहता हूं, आपके नाम को बोलना चाहता हूं, और करो तु काया शरीर से मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। इस तरह से वृत्ता से भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, तो कहते हैं दूसरा कुछ मांग लो। मान लो भगवान कहे कि और कुछ चीज है, ये तो भक्त हो तो मिल ही जाएगा। कहते नहीं नहीं, इसके अलावा मुझको कुछ नहीं चाहिए। आगे का श्लोक, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, कोई संपत्ति नहीं, न जोग सिद्धि न पुनर्भवम हुआ, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तुकी त्वई, मैं मुक्ति भी नहीं चाहता। समंजसता विरह कांचे, हे प्रियतम आपसे मैं अलग होना नहीं चाहता, आपकी भक्ति से युक्त होना चाहता हूँ, आपको मैं नहीं छोड़ना चाहता। इस प्रकार वृत्रासुर बहुत सुंदर समाधि में भगवान के गुणों का वर्णन किए हैं। और एक अपनी मजबूरी का श्लोक बोलते हैं कि हे नाथ, मैं तो बहुत बड़ा डिमांड कर दिया लेकिन क्या मैं इसके काबिल हूँ? ना, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपनी क्षमता से आपको प्राप्त कर लूंगा, ऐसा संभव नहीं है। अजात पक्षा यो मातरम खगा, स्तन्यम जथा बत्सतुरा सुधार था, प्रिया प्रिय विष्णम विषर्या मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। हे नाथ, जैसे घोंसले के अंदर अंडे से निकला हुआ पक्षी का बच्चा जिसका पंख नहीं जमा है, वो अपने प्रयास से अपना भोजन नहीं जुटा सकता, जब उसकी माँ कुछ कीड़ा फतिंगा भोजन लेकर आती है तब उसको खाता है, और भूखा हुआ वो अजात पक्षी जिसका पंख नहीं जमा है, कभी कभी माँ नहीं आती है और हवा चलता है और पेड़ के पत्ते हिलते हैं तो वो जानता है कि माँ आ गई, इस संभावना से वो मुंह फैलाता है। थोड़ा सा भी आवाज होता है तो भूखा पक्षी का बच्चा मुंह फैलाता है, इतना असमर्थ है, भूखे दिन भर इंतजार करता है लेकिन भोजन स्वयं नहीं जुटा सकता। उसी प्रकार हे नाथ, मैं साधनहीन अपने सामर्थ्य से आपको नहीं प्राप्त कर सकता, मेरे पास वो क्षमता नहीं है कि मैं आपकी भक्ति प्राप्त कर लूं, आपके चरणों की दर्शन कर सकूं, ऐसा संभव नहीं है। आप जब स्वयं विशेष कृपा करके मुझको स्वीकार करेंगे तब मैं आपको प्राप्त कर सकता हूं। ये साधनहीन यह भक्ति की सबसे बड़ी दैन्यता है। यद्यपि वो संकर्षण के चरणों को प्राप्त कर चुके हैं फिर भी विनम्रता बस कहते हैं कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं कि हे नाथ, जैसे खूंटे में बंधा हुआ बछड़ा, अब तुरंत की ब्याई हुई गाय बछड़े को छोड़कर जंगल में चरने चली जाती है, दिन भर नहीं आती है और घास भी नहीं खा सकता, भूसी भी नहीं खा सकता, अभी 10-20 दिन का बच्चा है, दिन भर माँ का इंतजार करता है, भूख से व्याकुल होकर बाएं बाएं चिल्लाता है, माँ जब लौट कर आती है तब उसका स्तन पीता है, और खूंटे में बंधा है, रस्सी में अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ मैं अपने सामर्थ्य से आपको नहीं प्राप्त कर सकता, मेरे पास क्षमता नहीं है कि मैं आपके दिव्य वैकुंठ धाम प्राप्त कर लूं, मेरे तो कर्म इतने जकड़े हुए हैं, कोई शिव के प्रति अपराध, पार्वती का श्राप, अनेक जन्म जन्मांतर का स्त्री बच्चों में आसक्ति, अनेक बंधन है जिसके कारण मैं आपके चरणों को नहीं प्राप्त कर सकता, आप कृपा करके आएंगे तब मैं आपको प्राप्त करूंगा। इतना कहने के बाद फिर वृत्रासुर को ग्लानि होने लगी, ये तो अपना निजी स्वार्थ की बातें हो रही है, ये तो भक्ति नहीं है, ये तो भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति शुद्धा भक्ति नहीं है। तब तीसरा उदाहरण देते हैं, नहीं नाथ, प्रियम प्रियम विष्टम विषर्या मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। जैसी प्रिया प्रदेश में गए हुए अपने प्रियतम का इंतजार करती है कि वो कब आएंगे और उनकी सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त होगा, वैसे नाथ मेरा मन आपकी सेवा के लिए ललायित है, मेरा अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं है। प्रिया कहते हैं तत् सुख सुखित्वम, पत्नी और प्रिया में थोड़ा सा अंतर है, हालांकि पत्नी भी प्रिया हो सकती है लेकिन पत्नी एक वैदिक सिद्धांत के अनुसार पाति इति पति और जो पालन करता है अपना पत्नी को उसको पति कहते हैं, और जो पति से पालन की अपेक्षा रखती है उसको पत्नी कहते हैं। कि वो अमेरिका रहे चाहे इंग्लैंड रहे, मेंटेनेंस भेजता रहे, क्योंकि विवाह किया है, हमारे पालन की जिम्मेवारी लिया है, देवता के सामने, अग्नि के सामने, कुटुंब परिवार समाज के सामने, इसलिए उसकी जिम्मेवारी है। और नहीं करता तो केस भी ठोक देती है, नहीं करा। लेकिन प्रिया ऐसी नहीं होती है, प्रिया अपने प्रियतम को प्रसन्न करके सेवा करके ही संतुष्ट रहती है, उसको अपने सुख से कोई मतलब नहीं, प्रिय के सुख में ही सुख की संभावना आशा बनी रहती है, उसको प्रिया कहते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि पत्नी प्रिया नहीं हो सकती, लेकिन प्रिया का अर्थ है प्रियतम को प्रसन्न करके सुखी होना, जैसे गोपियों का भाव है, सिद्धार्था रानी का भाव, तत् सुख सुखितम। तो कह रहे हैं कि प्रियम प्रियव, जैसे प्रिया अपने प्रियतम की इंतजार करती है, अगर प्रियतम कहीं चले गए तो क्षण क्षण याद करती है कहाँ होंगे, इस समय उनको भोजन मिला होगा कि नहीं, उनका वस्त्र कौन धोता होगा, उनका चरण संवाहन कौन करता होगा, क्षण क्षण स्मरण करके दुखी रहती है, और प्राप्त होने के बाद प्रचुर सेवा का अवसर प्राप्त करके सुखी हो जाती है। तो वैसे मेरा मन आपको देखना चाहता है। तो इतना कहने के बाद भी उनके मन में आए, क्या मैं इसके काबिल हूँ, बामन हैया चांद छुईते इच्छा करे, एक बावना चांद को छूना चाहता है, वैसे हे नाथ मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। रूप गोस्वामी कहते हैं कि आपके गुणों को देखकर तो लोभ होता है, लेकिन अपनी क्षमता को देखकर बड़ा मन में क्षोभ होता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। कहते हैं तो कि आपके गुणों को देखकर मेरे मन में लोभ हो रहा है कि मैं गौड़ पार्षद बन जाऊं, रूप गोस्वामी कहते हैं, लेकिन हे नाथ अपनी क्षमता देखकर मुझको बड़ा क्षोभ होता है, भावना जैसे चांद छूना चाहता है। किंतु तुमार गुण उपजाए लोभ, किंतु आपकी विशेष विशेषता गुण लोभ उपजा रहा है। तो हे नाथ मैं अपने कर्मों में कोई कंसेशन नहीं करना चाहता हूँ, मेरे कर्मों से मेरा जन्म कहीं भी हो कोई बात नहीं, ममो तमश्लोक जनेश सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी, मैं अपने कर्मों से संसार चक्र में सुअर कुत्ता बिल्ली किसी शरीर में जाऊं जाने दीजिए, इसमें कोई कंसेशन नहीं, लेकिन एक व्यवस्था कीजिए कि हे उत्तम श्लोक जहां भी जाऊं जिस जोनी में जाऊं आपके भक्तों का संग प्राप्त हो, उनकी कृपा से मैं आपको प्राप्त कर सकता हूं। और स्वासक्त चित्त से न नाथ भूयात, जिनका चित्त संसार में आसक्त है उनसे मेरा कभी संग न हो, आपके भक्तों का संग प्राप्त हो। तो इस प्रकार मैं केवल मात्र अनुवाद भर किया, चैतन्य महाप्रभु इन श्लोकों का स्वादन किए हैं चैतन्य चरितामृत में, और इस प्रकार यह वृत्तासुर का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, श्रील प्रभुपाद के बहुत प्रिय श्लोक है ये सब। तो इसमें वृत्तासुर भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं, और समाधि की अवस्था में वृत्तासुर की इस अवस्था को देखकर इंद्र चकित है। बाद में जब उनको होश हुआ कि अरे मैं तो अभी इसी शरीर में हूँ और कहाँ पहुंच गया, भविष्य को खींचकर वर्तमान में ला दिया, तब वो अपना त्रिशूल उठाए और इंद्र को तंग करने लगे। इसके बाद इंद्र अपना वज्र छोड़ना चालू किए, एक हाथ वज्र छोड़कर एक हाथ को काटे, फिर दूसरे हाथ को, फिर सिर को, इतना आसानी से नहीं कटा, पूरा एक साल लग गया सिर कटने में, पूरा वो वज्र उनके सिर को काटता रहा, एक साल में वो सिर कटा, तब वो भगवान को फिर प्राप्त कर गए, क्योंकि विशाल शरीर था। तो इस तरह से वृत्रासुर भगवान को प्राप्त कर लिए। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। तो आप फिर आगे पढ़ते रहिएगा, देर तो काफी हो गया। कोई प्रश्न है? चलो, अब तक आपको विष्णु तत्व का बोध नहीं है, संकर्षण और कृष्ण में क्या अंतर है? स्वयं कृष्ण ही संकर्षण के रूप में है, उनका दूसरा स्वरूप संकर्षण है। संकर्षण कभी कभी विष्णु हरि कृष्ण का भागवत में वर्णन है, कहीं कहीं कृष्ण को विष्णु कहा गया है और कहीं कहीं विष्णु को कृष्ण कहा गया है, हरि भी कहा गया है। तो ये एक ही स्वरूप है, तत्वतः उनमें कोई भेद नहीं है। क्रिया भेद से, उनकी लीला भेद से भेद है। जैसे रथारूढ़ भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका जाने के लिए तयार थे और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तो भगवान अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर ब्रह्मास्त्र रक्षा किए और रुद्रा के गर्भ में प्रविष्ट हुए। सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान विष्णु विष्णु हरि अपना चक्र छोड़ करके रक्षा कर लिए। तो उस रथ पर विष्णु बैठे थे, कृष्ण थे ना, लेकिन सूत गोस्वामी विष्णु कहते हैं। विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक, जो कणकण में निवास करे उसको विष्णु कहते हैं। भगवान का वह स्वरूप जो कणकण में है, जब स्वयं भगवान अनेक गोप सखा और बच्चे के रूप में हो गए, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आज श्रुति का वह वाक्य सार्थक हुआ, सर्वम विष्णुमयम जगत। सर्वम विष्णुमयम जगत, और बच्चे के रूप में और बछड़े के रूप में कृष्ण बने थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आज श्रुति का वह मंत्र साकार हुआ कि सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा जगत विष्णुमय है, इतना विस्तार हो गया। तो संकर्षण जो अपने तेज से, अपनी भगवता से सारे जगत को आकर्षित करते हैं, उनको संकर्षण करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा स्वरूप संकर्षण है। समझ रहे हैं? जीव गोस्वामी तो राम बलराम का अर्थ भी कृष्ण करते हैं, संकर्षण का अर्थ भी कृष्ण करते हैं। तो उनमें कोई तात्विक भेद नहीं है। संकर्षण का अर्थ श्री बलराम और संकर्षण का अर्थ श्री कृष्ण है, दोनों है। भगवत स्वरूप में भेद करना अपराध है। छोड़ने वो छोड़ना नहीं, अपना टेस्ट है। इनका प्रश्न है कि वो एक प्रमाणिक बोनाफाइड संप्रदाय रामानुज संप्रदाय में जन्म लिए थे, तो उसको छोड़कर फिर गौड़ीय संप्रदाय में क्यों आ गए गोपाल भट्ट गोस्वामी? ये छोड़ने का मतलब नहीं है, अपना अपना टेस्ट है। जैसे मान लीजिए एक ही आलू से अनेक सब्जियां बनती हो, जिसको जो अच्छा लगे खाए, है तो आलू ही, चाहे वो पकौड़ी हो, समोसा हो, या भुंजिया हो, सब्जी हो, जो भी हो, लेकिन एक ही चीज है। और एक घटना है जिसकी चर्चा मैं जानबूझकर नहीं किया कि देर हो जाएगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता वेंकट भट्ट के पास जब चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास कर रहे थे, तो उनके साथ सख्य व्यवहार हो गया, मित्र था। तो एक दिन मजाक मजाक में महाप्रभु कहने लगे कि वेंकट जी एक बात पूछूं। तो कहे हाँ पूछिए। तो कहते हैं कि आप जिस लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, परात्पर ब्रह्म सर्वाराध्य लक्ष्मी नारायण कहते हैं, और वह लक्ष्मी तो पतिव्रता शिरोमणि है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ इसमें क्या डाउट है, लेकिन मैं तो लक्ष्मी के अंदर व्यभिचार देखता हूँ। अरे आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? कहते हाँ देखो, हमारे प्रभु गोपाल, नटवर वेश गोपाल, गाय चराने वाले वृंदावन बिहारी, उनके रूप से लक्ष्मी प्रभावित हो गई और उनके साथ रास में आलिंगन चुम्बन प्राप्त करने की इच्छा कर ली। यह व्यभिचार नहीं है? जो वैष्णव, जो विष्णु की पटरानी बक्षा विलासिनी वैकुंठ की अधिष्ठात्री पतिव्रता शिरोमणि, वो एक गोपाल के प्रति इस तरह लोभ उत्पन्न हो जाए, तो यह व्यभिचार नहीं है? तो कहते हैं कि प्रभु आप इस तरह की बात मत कहिए, विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वेंकट भट्ट कहे दोनों तत्वतः एक हैं। तो कहते मान लिया एक है, हम भी जानते हैं एक है, लेकिन लक्ष्मी को कृष्ण का आलिंगन क्यों नहीं प्राप्त हुआ? आज भी वो बेल वन में तपस्या करती है, साधारण गोपियों को जो आलिंगन प्राप्त हुआ रास में, वो लक्ष्मी को क्यों नहीं प्राप्त हुआ? अगर विष्णु ही कृष्ण है तो लक्ष्मी को कृष्ण का आलिंगन क्यों नहीं प्राप्त हुआ, महाप्रभु पूछते हैं। तब वेंकट भट्ट कहते हैं ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो कहते हैं यही समझना है, यही समझाना मैं आपको चाहता हूं कि कृष्ण में अधिक माधुरी है जो विष्णु में नहीं है। हैं वो दोनों एक, लेकिन मधुरता इनमें ज्यादा है। लक्ष्मी को क्यों नहीं प्राप्त हुआ? तो कृष्ण का मूल स्वरूप गोप वेश है और वो गोपी को ही पसंद करते हैं। उनका मूल पटरानी, राधा रानी आदि जो अंतरंगा शक्ति है वो गोपी हैं। और उन गोपियों का, राधा रानी की शरणागता कोई व्यक्ति ही उस सौभाग्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन लक्ष्मी अपना स्पेशल रिजर्व वैकुंठ की अधिष्ठात्री का अहंकार लिए हुए गोपियों का शरणागता नहीं स्वीकार हुई, कि शरणागत नहीं हुई, यही कारण है कि इस सुख से वंचित हो गई। अच्छा, तब वेंकट भट्ट कहते हैं अच्छा ये बात है। तो फिर कहते हैं कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भक्ति कीजिए लेकिन ज्ञान में, होश में, सिद्धांत की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ ब्रजेन्द्रनंदन अद्वैत तत्व हैं और उनकी अंतरंगा आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी हैं, और जितने भगवत स्वरूप हैं कृष्ण के ही अंशभूत हैं, और जितनी लक्ष्मी स्वरूप हैं राधा रानी के ही अंश स्वरूप हैं। लक्ष्मी से बढ़कर राधा रानी हैं। वो गोलोक धाम जहां चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, लक्ष्मी सहस्त्र सत्संभ्रम से विमानम, जहां सारे वृक्ष कल्प वृक्ष है, जहां के प्रत्येक पत्थर चिंतामणि है, और जहां की प्रत्येक सेविकाएं लक्ष्मी हैं, अनंत लक्ष्मी, लक्ष्मी सहस्त्र सत्संभ्रम से विमानम, जहां की दासियां लक्ष्मी हैं, और वहां की मालकिन अधिष्ठात्री राधा रानी की क्या बात कहा जाए। ये दासी जो वैकुंठ की अधिष्ठात्री है वो गोलोक पति की दासी है, एक नहीं अनंत लक्ष्मी, इस सिद्धांत को समझ जाइए। तो वेंकट भट्ट उनका चरण पकड़ लिए और कहे कि प्रभु क्यों अपने को छिपा रहे हो, इतनी गूढ़ रहस्य की लीला आप कह रहे हो, आप ही स्वयं श्री कृष्ण हो, आप ही विष्णु हो, अपनी लीला को भंगी से क्यों कह रहे हो, सीधे क्यों नहीं कहते हो। तो इस तरह वेंकट भट्ट को ज्ञान हुआ और अब वेंकट भट्ट रामानुज संप्रदाय में मन लगाएंगे, साक्षात भगवान ब्रजेन्द्रनंदन सची सुत गौर सुंदर में, बतलाइए क्या करें। तो वेंकट भट्ट ही चेंज हो गए, उनको कहे नहीं कि आप श्री संप्रदाय से, रामानुज संप्रदाय से गौड़िये हो जाइए, लेकिन वो तो हो ही गए ना। अब गौर गौर करने लगे तो बेटा क्यों नहीं गौर भक्त हो जाएगा छोटा, तो इसमें क्या अंतर है? टेस्ट थोड़ा मधुर हो गया, चीज एक ही है, तो उसको थोड़ा और उसमें माधुरी आ गई, इसलिए गोपाल भट्ट गौड़िये हो गए। और वही गौड़िये से आप चिंता करते हो, अद्वैती भी गौड़िये हो गए, उनका प्रबुद्ध भी, इतना महाप्रभु का प्रभाव रहा। ठीक है, हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।